श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा ही कर्म सब प्रकार से किए जा रहे हैं, और जो व्यक्ति अपने को अकर्ता देखता है वही देखता है। इसी प्रकार का श्लोक 30 अध्याय के 27वां श्लोक है, इसी प्रकार का है, उसमें भी शब्द इसी प्रकार के हैं। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तो जो पहली पंक्ति है प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, इसमें और उसमें शब्द काफ़ी मिलते जुलते हैं। प्रकृति एव च, प्रकृति के द्वारा ही, और उसमें बताया गया प्रकृति के गुणों के द्वारा ही, तो केवल यही अंतर है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं प्रकृति के द्वारा ही सब प्रकार से कर्म किए जा रहे हैं, और उस श्लोक में बताया गया प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही सब प्रकार से कर्म किए जा रहे हैं। और श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि जो अपने को अकर्ता देखता है वो देखता है, और उस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि अहंकार के कारण मूर्ख बना हुआ व्यक्ति अपने को कर्ता समझता है। तो अपने को कर्ता समझना बहुत बड़ी मूर्खता है, और अपने को अकर्ता समझना ये वास्तव में देखना है, तो भगवान ने बता रहे हैं। और इसके तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं वो क्या बतला रहे हैं कि अगर जीव भगवान की सेवा नहीं करता है तो प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए वो बाध्य होता है, और प्रकृति के गुणों से कर्म कराते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति सुख भोगने के लिए या दुख भोगने के लिए कर्म करता है, चाहे वो सुख के लिए कर्म करे चाहे दुख के लिए कर्म करे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि दुख के लिए कौन कर्म करता है, दुख भोगने के लिए कौन कर्म करता है? हर कोई कर्म तो सुख भोगने के लिए करता है,
दूसरे के दुख के लिए
नहीं, अपने दुख भोगने के लिए। यहाँ पर उपाय लिखते हैं कि चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, मनुष्य जो भी करता है चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वो शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि दुख के लिए कोई कर्म कहाँ करता है? लेकिन इसका एक उदाहरण है, उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति आग में हाथ डालता है, उसे पता नहीं कि आग जलाएगी, तो वो आग में हाथ क्यों डालता है? सुख भोगने के लिए। उससे कुछ अनुमान होता, अंदाजा होता है कि मैं सुख पाऊंगा, आग में हाथ डालता है, लेकिन वास्तव में उससे क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो ये भी कहा जा सकता है उसने सुख भोगने के लिए आग में हाथ डाला था, लेकिन वास्तव में तो उसने दुख भोगने के लिए आग में हाथ डाला था, उसे पता नहीं है किसे दुख मिलेगा, वो सुख भोगने के लिए आग में हाथ डालता है, लेकिन वास्तव में वो आग में हाथ डालता है दुख भोगने के लिए। तो जितने भी कर्म जीव करता है सुख भोगने के लिए करता है, लेकिन चूंकि वो भगवान से स्वतंत्र होकर के सुख भोगना चाहता है तो उसको दुख मिलता है। तो वास्तव में वो जितने भी कर्म कर रहा है सब दुख भोगने के लिए ही करता है, लेकिन उसका इरादा क्या है? सुख भोगने के लिए कर्म करना, लेकिन वास्तव में वो सुख भोगने के लिए कर्म नहीं कर रहा है, वो दुख भोगने के लिए कर्म कर रहा है, है ना? तो वास्तव में अगर हम सुख भोगना चाहते हैं तो हमें कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, और कृष्ण के लिए अगर कर्म नहीं करते हैं तो माया हमें ऐसा भ्रमित करती है कि हम सोचते हैं कि हम सुख भोगने के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कर्म करते हैं दुख भोगने के लिए, है ना? जितने भी कर्म हैं हमें दिखाई पड़ रहा है उसमें सुख दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? दुख है। ये माया का जो है एक ऐसा भ्रम जाल कि हमें वो सुख दिखाई पड़ता है। तो माया जो है भगवान की एक ऐसी भ्रामक शक्ति है जो आपके दिमाग में ये भावना पैदा करती है कि तुम सुख भोग सकते हो, अजीब सोचता है हाँ मैं सुख भोग सकता हूँ, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है? वो दुख होता है, है ना? और माया फिर कहती है, माया कहती है कि अब तुमने दुख भोगा लेकिन आगे तुम सुख भोगोगे, अब तुमको दुख नहीं मिलेगा, अब तो सुख भोगोगे, और फिर से वो कर्म करता है, फिर से दुख भोगता है, और हर बार माया उसको भ्रमित करती है, है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं है, अब तुम सुख जरूर भोगो। इस तरह से माया जो है उसको भ्रमित करती है, और वो कितने जन्मों से जीव भ्रमित हो रहा है, दुखी दुख भोग रहा है, लेकिन फिर भी सोचता है माया के प्रभाव से कि मैं सुख भोग सकता हूँ, है आगे मैं सुख भोगूंगा, आगे मैं सुख भोगूंगा, ऐसा जो है माया का भ्रम है। इस माया के भ्रम से छूटने के लिए हमें कृष्ण की शरण लेनी होगी। धन्यवाद।